هو الله الرحمن الرحيم. دو نام ایک ہی مادے سے ہیں، تھوڑے سے فرق کے ساتھ ایک ساتھ آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے اندر بھی یہ دونوں نام ساتھ ہیں. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم، یہاں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ یہ دونوں نام ایک ساتھ آتے ہیں. تو ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے یہ دو نام ہم سے کیا تقاضا کرتے ہیں، اور ان ناموں کو سمجھنے کے بعد پھر ہماری عملی زندگی میں کیا تبدیلی آنی چاہیے اور ہم اس سے اللہ تعالیٰ کی ذات کو پہچان سکیں. تو اللہ تعالیٰ کے یہ دونوں نام، ان کا مادہ را، ہا اور میم ہے. رحم کہتے ہیں یوٹرس کو. یوٹرس وہ جگہ ہوتی ہے جہاں بچہ پرورش پاتا ہے، مدرز ووم. ہم میں سے ہر ایک تنگ کھاٹی سے گزر کے آیا کہ جہاں انسان سیدھا بھی نہیں ہو سکتا، اور بچہ اس دنیا میں آنے سے پہلے اپنے ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، اس جگہ کو رحم کہتے ہیں. گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ان صفات کو ماں کی محبت کے ساتھ جوڑ دیا. بچے کے لیے ماں کے دل میں کیا محبت ہے، اس کو تو ماں ہی جانتی ہے. تو اللہ تعالیٰ الرحمن بھی ہے اور الرحیم بھی ہے. دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے. وہ کیا فرق ہے؟ الرحمن کہتے ہیں وہ جو کسی ہنگامی ضرورت پہ کام آئے، وہ جو کسی ایمرجنسی حالات میں شدید ضرورت کے وقت شدت اور رحمت کے ساتھ اپنی مدد بہم پہنچائے. کوئی وقت یاد کیجئے جب آپ بے چین تھے، بیتاب تھے، بہت پریشان تھے، کوئی امید کی کرن نہیں تھی، اور ایک لمحے میں آپ کا وہ کام ہو گیا، وہ مشکل حل ہو گئی، وہ چیز جس کو پانا چاہتے تھے وہ مل گئی. تو یہ اللہ تعالیٰ کی صفت الرحمن ہونا ہے. دنیا میں دیکھا جائے تو عام حالات میں تو بہت سارے لوگ کام آتے ہیں، لیکن جب انسان ایکسٹرا آرڈنری مشکل میں پھنستا ہے یا اچانک کسی مشکل میں آتا ہے، تو عموماً اس وقت پاس کوئی بھی نہیں ہوتا. وہ لوگ جنہوں نے دعوے بھی کیے ہوتے ہیں کہ ہم تمہاری مشکل میں کام آئیں گے، وہ بھی اس وقت اویلیبل نہیں ہوتے. تو ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ ہی ہمارے کام آتا ہے. اسی طرح الرحیم کس کو کہتے ہیں؟ جس کی رحمت کا سامان مسلسل پہنچے. کنٹینیوٹی ہے اس میں. نشو و نما کے راستے کی رکاوٹوں کو دور کرنے والا. رحمان میں مبالغہ ہے لیکن رحیم میں کنٹینیوٹی ہے. یہ ایک فرق ہے، اور بھی کچھ فرق ہیں جو آپ کے سامنے رکھوں گی. علامہ ابن قیم فرماتے ہیں کہ الرحمن یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. یعنی جہاں لفظ الرحمن آئے گا تو اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے، ایک تعریف ہے، جبکہ الرحیم کا تعلق اس کے ساتھ ہے جس پہ رحم کیا جائے. یعنی اللہ تعالیٰ کے تناظر سے دیکھیں تو رحمان ہے، اور وہ بندہ جس پہ اللہ کا رحم ہو رہا ہے تو اس کو الرحیم کہیں گے. ایک اور فرق بھی ہے اس میں. عبداللہ بن مبارک جو امام بخاری کے استادوں میں سے استاد تھے، وہ کہتے ہیں کہ الرحمن هو الذی اذا سئل اعطى. الرحمن وہ ہے کہ جب اس سے مانگا جائے تو وہ عطا کرے، اور الرحیم وہ ہے اذا لم يسأل غضب، جب اس سے نہ مانگا جائے تو ناراض ہو. سبحان اللہ، دونوں ہی نام کتنے خوبصورت ہیں. رحمان کون ہے؟ جس سے مانگے تو وہ عطا کرے. اور الرحیم کون ہے؟ کہ جب نہ مانگا جائے تو ناراض ہو. اور یہی مفہوم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں بھی ملتا ہے. آپ نے فرمایا من لم يسأل اللہ يغضب علیہ، جو اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگتا اللہ تعالیٰ اسے ناراض ہو جاتا ہے. دنیا کے بادشاہوں سے برعکس، دنیا والوں سے مانگیں تو وہ ناراض ہوتے ہیں. شروع میں کوئی خوشی سے سن لے گا، اگلی دفعہ تھوڑی سی کراہت ہوگی، اور شاید تیسری دفعہ دروازہ ہی نہ کھولے، کسی کو باہر سے بھیج دے کہ مصروف ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کیسا بادشاہ ہے، کیسا مالک ہے کہ رات دن ہمیں دیتا ہے اور دیتے دیتے نہیں تھکتا. پھر اسی طرح ایک تیسرا فرق الرحمن اور الرحیم میں کیا ہے؟ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دنیا کے اعتبار سے الرحمن ہے. اس کی صفت الرحمن کی وجہ سے مومن بھی کھا رہا ہے اور کافر بھی کھا رہا ہے، مومن بھی جی رہا ہے اور کافر بھی جی رہا ہے. आज दुनिया में आप बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमता देखें, बड़े बड़े घरों में देखें, नाफरमानियों के बावजूद तो बाज़ दफ़ा परेशान होने लगते हैं। इनको कैसे मिल गया, इनको क्यों मिल गया, इन्होंने क्या किया है? कहा ये मैं अर्रहमान हूँ, मुझे परवाह ही नहीं किसके हाथ में जाता है। जैसे इंसान छींटा मारता है ना, तो उसको परवाह नहीं होती कि ये दाने किसके हाथ में जा रहे हैं और ज़मीन पे जा रहे हैं या कहाँ जा रहे हैं। इसी तरह अल्लाह ताला इस दुनिया को, क्योंकि ये दुनिया इतनी अहम नहीं, इस दुनिया के अंदर वो चीज़ें नहीं हैं कि जिसको संभाल के रखा जाए, अल्लाह ताला की निगाह में इस दुनिया की अहमियत एक मच्छर के पर से भी हकीर है। तो दुनिया में सबको दे रहा है, बल्कि बाज़ दफ़ा तो काफिरों को मुसलमानों से ज़्यादा देता है। हुसन को देख लें, दुनिया की ज़ाहरी चकोचौंध को देख लीजिए, ज़्यादा दिखती है, लेकिन अर्रहीम कब होगा? क़यामत के दिन। कुरान पाक में आता है वकान बिल मुमिनीना रहीमा, सूरत अल अहज़ाब की आयत नंबर 43 है ये, कि वो मोमिनों पर बड़ा रहम करेगा। ये कब होगा? क़यामत के दिन। एक रिवायत में आता है कि अल्लाह ताला की रहमत के 100 हिस्से हैं, 100 पार्ट्स हैं उसकी रहमत के, जिसमें से एक हिस्सा उसने इस दुनिया में बांटा, जिसकी वजह से हम सब एक दूसरे से मोहब्बतें करते हैं। माँ बच्चे को फेंकती नहीं है, पालती है, वो रातों को जगाए, वो जिस्म की सारी ताकत ले ले फिर भी माँ उसको संभाले रखती है। हत्ता के फरमाया तुम जानवरों के थनों से दूध निकाल लेते हो और वो तुम्हें टांग नहीं मारते, ये भी उसकी रहमत है। सींग वाली बकरी बगैर सींग वाली बकरी को सींग नहीं मारती, ये भी उसकी रहमत है। दुनिया में आप देखिए कि कितने कीड़े हैं, कितने लाल बेग्स हैं, कितने सांप हैं, कितने बिच्छू हैं। ये अल्लाह की सिफते रहमा है इनके दिलों में कि ये हमें डसते नहीं, वरना कौन रोके इनको? जो दरख्तों के अंदर रहते हैं वो हमारे घरों में भी आ सकते हैं। बाज़ दफ़ा आपके इर्द गिर्द कीड़े फिरते रहेंगे लेकिन आपको कुछ नहीं कहेंगे। ये अल्लाह ने उनके दिलों में डाल दिया कि तुम बंदों को कुछ ना कहो। फरमाए ये एक हिस्सा है, तो ज़रा इमेजिन तो कीजिए उस दिन क्या होगा जब वो बाकी 99 यानी 99 हिस्से बांटेगा। उस दिन फिर उसकी रहमत का हाल क्या होगा? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर काफिर को अल्लाह की रहमत का अंदाज़ा भी हो जाए कि वो कितना रहीम है, कितना रहम करने वाला है, तो वो भी अपने तमाम गुनाहों और अपनी तमाम सरकशियों के बावजूद जन्नत की उम्मीद लगा ले कि ठीक है मैं बहुत गुनाहगार हूँ, लेकिन चूंकि अल्लाह ताला बड़ा रहीम है तो वो मुझे भी दे देगा। इस बात को सुन के दिल तो खुश हुआ, लेकिन अगली बात होश को गुम करने वाली है। फरमाए इसके बरक्स अल्लाह ताला की सिफते कहारियत और जबरूत और अलजब्बार होना, वो भी इतनी एक्सट्रीम पे है कि अगर ईमान वालों को उसकी पूरी खबर मिल जाए तो कोई मोमिन भी जन्नत की उम्मीद ना रखे। क्या बात समझ में आई? उसकी हर सिफत एक्सट्रीम पे है। नवाजने पे आए तो बे इंतहा नवाज दे, और लेने पे आए तो जितना मर्जी ले ले, इंसान चीखता रहे उसको मिल नहीं सकता। तो अल्लाह ताला की सिफत अर्रहमान और अर्रहीम हमसे भी कुछ तकाजे करती है, और वो क्या है कि हमारे दिल में भी दूसरों के लिए रहम के जज्बात होने चाहिए। हम भी दूसरों की गलतियों को माफ़ करने वाले हों, हम भी दूसरों के लिए नरमी महसूस करें अपनी ज़ात में। जिस तरीके से वो मुसलसल अपनी रहमतें बरसाता है, हमें भी ऐसे काम करने हैं कि अल्लाह ताला की रहमतों में से हिस्सा पा सकें। बाज़ दफ़ा अल्लाह ताला की रहमतें बरसती हैं लेकिन हम कोई एक ऐसा फैक्टर अपने इर्द गिर्द जमा कर लेते हैं जिसकी वजह से हमारा हिस्सा उसमें से निकल जाता है। मसलन एक हदीस में आता है कि जिस घर में कुत्ता हो वहाँ रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते, या जिस घर में तस्वीरें हों वहाँ रहमत के फरिश्ते नहीं दाखिल होते। अब इस वक्त सवाल नहीं, सिर्फ बात को समझिए। सिर्फ इशारा देना मकसूद है कि अल्लाह की रहमतें तो बरस रही हैं लेकिन हम लेना चाहते हैं कि नहीं। फिर इसी तरह बाज़ अहादीस में दिल के कुछ अफ़ाल पे बात होती है, जैसे लैलतुल कद्र की रातों में इबादत करने वालों को बख्श दिया जाता है, मगर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके दिलों में कीने, बुग़्ज़, हसद, रकाबतें होती हैं, उन पे रहमत नहीं होती। लैलतुल कद्र की रात में इतने रहमत के फरिश्ते आसमान से उतरते हैं कि ज़मीन आसमान तंग होने लगते हैं, इसीलिए इसको कद्र की रात भी कहते हैं, तंगी की रात। लेकिन उस रात भी वो लोग अल्लाह की रहमतों से महरूम होते हैं जो दाइमुल खमर हों, हमेशा के शराबी, ड्रंक। तो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि ऐसी तमाम चीज़ें जो उसकी रहमतों से हमें महरूम करती हैं वो हमारी ज़िंदगी से निकल जाएँ। फिर अल्लाह सुबहाना ताला की सिफत अर्रहमान, ये लफ्ज़ कुरान पाक में 57 टाइम आया, 57 शायद बोलेंगे उर्दू में, 5 और 7। कुछ अगर रेफरेंसेस लिखा दूं ताकि कभी आप बाद में ख़ुद भी ढूंढना चाहें, आयत नहीं बोलूंगी, सिर्फ नंबर बोलूंगी। सूरत बकरा की आयत 163, सूरत मरियम की आयत नंबर 93, सूरत तौहा की आयत 5, सूरत फुरकान आयत 26। और आपके लिए एक बड़ी अच्छी यानी एक एक्टिविटी हो सकती है अगर आप करें, अगर मैं आपको एक सवाल दे दूं फिर आप उसको करके बताइए, सवाल लिखिए इस नाम के नाते से। कुरान पाक की वो कौन सी सूरत है जिसमें सबसे ज़्यादा अर्रहमान का लफ्ज़ आया है? ढूंढिए। और हैरान हो जाता है इंसान जब वो आता है, पूरी सूरत तो क्या सिर्फ एक रुकू, आखिरी रुकू में तकरीबन 9 टाइम अर्रहमान का लफ्ज़ है। जिन लोगों ने दौरा कुरान किया उनको पता थी ये बात। सूरत मरियम 11 टाइम अगर मैं भूल नहीं रही, या 18 टाइम एक ही सूरत में, और आखिरी रुकू में 9 दफ़ा। अल्लाह अकबर। इसी तरह अल्लाह ताला का नाम अर रहीम कुरान पाक में 14 टाइम्स है, 14 दफ़ा। सूरत बकरा आयत 54, सूरत बकरा आयत 143, फिर बकरा ही की आयत 183, 182, 199, सूरत आल इमरान 129, सूरत मायदा आयत 39, और इसी तरह सूरत शुरा और बहुत सारी सूरतों में है। अल्लाह करे कि हम सब इन सब को महसूस कर सकें और देखें। लेकिन मैं चाहूँगी कि आपकी और अपनी तवज्जो इस तरफ डालूँ कि अल्लाह की रहमत की सिफत हमें अपने इर्द गिर्द कहाँ दिखती है। जब हमने दौरे कुरान के दौरान इस नाम पे तदब्बुर किया था तो मैंने 10 पॉइंट्स दिए थे। मैं समझती हूँ कि आप लोगों का भी हक है, सिर्फ सोच देने के लिए दोबारा बोल देती हूँ ताकि हम महसूस तो करें कि कहाँ कहाँ उसकी रहमतें, और ये बातें महसूस करने की हैं। मैंने तो उसके बाद, ये तो 10 थे, फिर आखिरी पारों तक पहुँचते हुए शायद इससे भी ज़्यादा चीज़ें और भी हमने नोट की थी कि मुझे तो हर तरफ उसकी रहमतें दिखती हैं। अब गाड़ी में बैठते हैं और बख़ैर व आफ़ियत घर आ जाते हैं। कितनी दफ़ा आपकी गाड़ी दूसरी गाड़ी से टकरा सकती थी, आपकी गाड़ी का टाई रॉड खुल सकता था, आपके व्हील्स इम्बैलेंस हो सकते थे, आप एक हल्की सी गलती कर सकते थे कि जिससे आप इस दुनिया की बजाय अगली दुनिया में चले जाते। ये उसकी रहमत है कि जिसने हमारे लिए ये आसानियाँ की। बारिश क्या है, क्या उसकी रहमत नहीं है? सारी बारिश एक ही दफ़ा बरस जाती, जल थल होता, जैसे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के दौर में सारी दुनिया में पानी खड़ा हुआ था वो कर देता। क्या ये उसकी सिफ़त रहमत नहीं कि क़यामत तक के लिए स्टोर किया हुआ पानी थोड़ा थोड़ा छम 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 बरसता है, और जब बरसता है तो ऐसे लगता है ये कभी ख़त्म नहीं होगा, और जब ख़त्म होता है तो ऐसे लगता है कभी बरसा नहीं। यानी जो नेमत उसने हमारे लिए रखी हुई है वो सारी इकट्ठी नहीं देता, आहिस्ता आहिस्ता देता है। जितना रिस्क हमारे ज़िम्मे था दे देता सारा, खा खा के फूल के फट जाते, फिर अगले दिन कुछ होता ही ना, ऐसा नहीं करता, थोड़ा थोड़ा देता है। बच्चे को देखिए, माँ के जिस्म से दूध पीता है, जितनी बच्चे की भूख बढ़ती जाती है दूध उतना थिक होता जाता है। शुरू दिनों का दूध पानी की तरह पतला, क्यों? इसलिए कि उसकी ज़रूरत इतनी थी। फिर जितना बच्चे की ज़रूरत बढ़ती जाती है उतना दूध गाढ़ा होता है। आप ज़रा सोचिए कि ये उसकी रहमत नहीं? पैदा होते ही क्या खिलाया? कुछ नहीं, पानी की जैसा दूध, और जब बड़े हुए तो दांत भी दे दिए। एक लम्हे के लिए सोचिए, अभी मेरे जहन में एक चीज़ अल्लाह ताला ने डाली कि पैदा होते ही बच्चे के मुंह में दांत ना होना, क्या ये उसकी रहमत नहीं? वरना क्या कोई माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती? जब बच्चे दांत रखते हैं तो माँ के लिए कितनी अजियत के दिन होते हैं। ये छोटी छोटी रहमतें महसूस किया करें, आपको शौहर का आपकी तरफ मुस्कुरा के देखना भी रहमत लगेगा कि अल्लाह ने उसके दिल में डाला, या आपके बच्चों का आपके सामने मती और फरमा बरदार खड़ा होना भी अल्लाह की रहमत होगी, या आपके घर के हैं सारे ये दिन के थके हारे आप घर के दरवाजे से घुसते हैं तो आप क्या कहते हैं, अल्लाह तेरा शुक्र है। ये एक पंजाबी की कहावत उसी ने इन्होंने बोली थी, तो मैं चाह रही हूँ आप इन्हीं से सुने।
जेड़ा सुख चुबारे वो ना बल्फ ना बुखारे, यानी जो आराम और सुख आपको घर में महसूस होता है वो जो पुराने ज़माने के मशहूर दारुल खिलाफे थे बल्ख और बुखारा जो शहर थे, तमद्दुन का गहवारा वहाँ भी नहीं मिलता। थैंक
जज़ाकअल्लाह खैर,
यू।
सच है ना, कहते हैं ना अपनी कोठरी तिनकों की भी हो तो वहाँ चैन मिलता है। महल और बड़े बड़े पैलेसेस में भी आप रह ले, लेकिन आपको अपना चुबारा ज़रूर याद आता है। क्या ये अल्लाह की रहमत नहीं? कितना इंसान अपने आप को सिक्योर महसूस करता है, और उसने कुरान पाक में कहा भी है, सूरह नहल में आता है। फिर देखिए शौहर और बीवी का साथ, क्या ये रहमत नहीं? जूं जूं जज्बात उभरते जाते हैं, अल्लाह ताला ज़िंदगी में वो चीज़ें मुयस्सर करते जाते हैं। अभी फिर यहाँ मेरे ज़हन में एक और चीज़ आ गई कि यानी अल्लाह ने ही डाली है यकीनन, कि पैदा होते ही बच्चा छोटा है, शादी नहीं हो सकती, वो जज्बा ही नहीं। जो ही 12-13 साल की उम्र हुई, जो शादी की उम्र है, तो वो जज्बात उभर गए। आप ज़रा सोचिए, अगर छोटे बच्चे उनके दिल में ये जज्बात होते और शादी वो कर ना सकते, तो हाल क्या होता? ये अलग बात है कि अब आज हमने ऐसे हालात पैदा कर दिए कि वक्त से पहले ऐसी चीज़ें आम कर दी कि जिससे छोटे बच्चे भी अब इन चीज़ों में पड़ गए। शऊर से जिएंगे ना, तो हर जगह आपको अल्लाह की रहमतें बिखरेंगी, बिखरी भी दिखेंगी। मुझे तो घास को देख के उसकी रहमत नज़र आती है, बादलों को देखें, सितारों को देखें, अल्लाह ताला ने किस तरीके से ये सब कुछ रखा कि ऐसे लगता है कि हम वाकई अगर आंखें खोल के जिए तो फिर हम अल्लाह सुबहान ताला की रहमत के बगैर जी ही नहीं सकते। हमें शैतान से उसका बचाना क्या उसकी रहमत नहीं है? वक्त से पहले हमें किसी बात की खबर हो जाना कि देखो ये जायज़ नहीं है, ना करो, क्या दिल से गुनाहों की रग़बत का ख़त्म हो जाना उसकी रहमत नहीं है? 13वें पारे के पहली आयत में क्या आता है? वो माँ उबर रियो नफसी इन्ना नफ्स अल अम्मारतुम बिस्सू इल्ला मा रहिमा रब्बी। हमारे दिल में अगर अब गुनाहों की रग़बत कम हो रही है, तो आप समझ लें कि ये अल्लाह की रहमत है। आज हम कुरान की क्लास में जितने शौक़ और ज़ौक़ से आते हैं, क्या ये आना अल्लाह की रहमत नहीं है? हम इसकी जगह कहीं और भी तो बैठ सकते थे और बैठते थे, अल्लाह ने वहाँ से उठा के यहाँ बुला दिया, क्या ये उसकी रहमतें नहीं है? महसूस कीजिएगा, सिर्फ 24 आवर्स तक अगर आपने अपनी ज़िंदगी में से अल्लाह ताला के मामलों को देख लिया, तो आपको उसकी रहमतें नज़र आएंगी। फिर एक और रहमत भी उसकी, सारी ज़िंदगी का गुनाहगार मुसी, सारी ज़िंदगी दर दर की खाक छानने वाला शख्स, जब अल्लाह के सामने आके इकरार करता है ला इलाहा इल्ला अंत सुभानक इन्नी कुंतु मिनज़ ज़ालिमीन, और वो एक ही झटके में माफ़ कर देता है, ताना नहीं देता, इल्ज़ाम नहीं देता, 900 चूहे खा के बिल्ली हज को गई ये नहीं कहता। सबके बीच में बैठे बैठे सच्चे दिल से तौबा करने पे हमारे गुनाहों को माफ़ कर देता है, क्या ये उसकी रहमत नहीं? अल्लाह ताला की ये सिफ़त काबिले गौर है, उसने हमारे पर्दे रख लिए। इंसान सारी ज़िंदगी गुनाहों में गुजारे और बिस्तरे मर्ग पे मौत के वक्त के शुरू होने से पहले तौबा कर ले, लोग तो सोचेंगे न जाने किस खाई में गिरेगा, लेकिन अल्लाह ताला ने किफ़ल को बख्श दिया था, अल्लाह आज भी बख्श सकता है। मशहूर वाक्य आप लोगों ने सुना होगा, सारी गुनाह करने वाला शख्स बख्शा गया, बनी इसराइल का एक शख्स था, और अल्लाह के नबी सल्लम बहुत कसरत से इसका जिक्र करते थे। लोगों की ज़रूरियात से फ़ायदा उठाता था। एक औरत को माल की ज़रूरत पड़ी, इसके पास लेने आई, कहा ठीक है जो मांगोगी दूंगा, एक रात के लिए मेरी ख्वाहिश पूरी करो। न जाने किस मजबूरी में थी, मान गई, 60 दिनार पे मामला तय हुआ। और जब रात को वो तन्हाई में उसके साथ था, तो औरत सूखे पत्ते की तरह थरथरा रही थी, कांप रही थी, किफल बाज आ जाओ, इत्तकिल्ला, अल्लाह से डर जाओ। कहने लगा तुम्हें क्या हुआ, मैं तो हर रोज़ से गुनाह करता हूँ, मैं तो नहीं डरता। कहने लगी नहीं, मुझे अल्लाह से डर लगता है। न जाने उसके दिल के किस गहरे जज्बे का इजहार था ये, कि उसके दिल में बात उतर गई, कहा जा पैसे भी ले जा, और उसके बाद किफल था और उसका रब था। ए अल्लाह, मैं तो कभी नहीं इस तरह शर्माया जैसे ये औरत शर्मा रही थी। अल्लाह ताला से मनाजात करता रहा। सुबह से पहले किफल का इंतकाल हो गया। खबर फैल गई बस्ती में, किफल मर गया और अपने दौर का बदमाश शख्स था। लोगों ने कहा, चलो आओ ज़रा देखते हैं अल्लाह ने इसको जहन्नम की किस वादी में फेंका है, क्योंकि लोग तंग आए हुए थे उसके जुल्म से। लेकिन उनको क्या पता कि वो रहमान और वो रहीम, वो अलगफ़ूर वलगफ़ार, वो सित्तारुल अयूब, वो ऐबों को छुपाने वाला, उसने किफल को माफ़ कर दिया। उस दौर में जब कोई मरता था तो उसके दरवाजे पे कुदरती तौर पे लिखा जाता था कि वो जन्नत में गया या जहन्नम में। लोगों ने उसके दरवाजे पे लिखा देखा, इन्नल्लाह कद गफर किफला, अल्लाह ने किफल को माफ़ कर दिया। वो जिसको चाहे माफ़ कर दे, क्यों शर्माता इंसान? एक दफ़ा उसकी तरफ आके दे देखे, जिस तरह अपनी माँ नहीं आपकी बात किसी को बताती, वो रब भी नहीं बताता। तो बात यही है, कतबा अला नफ्सिहि रहमा, उसने अपने नफ्स पे रहमत लिख ली। वो रहम करने वाला है। इंसान जो है वो उसके रहम की बजाय उसके कहर को बुला ले, ये इंसान की चॉइस है, लेकिन वो वाकई रहम करने वाला है। अपनी दुआओं में दुआ मांगने का ये अंदाज़ इख्तियार कीजिए, या अरहमुर राहिमीन, ए सबसे ज़्यादा रहम करने वाले मुझ पर रहम फरमा। अल्लाह ताला को उसकी सिफात के वास्ते से बुलाया जा सकता है, आप इसके वसीले से बुला सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। आप कह सकते हैं, ए वो ज़ात जिसने अपने नफ्स पे रहमत लिख ली, तो मुझ पे भी रहमत कर दे। फिर इसके लिए दुआएं सिखाई गईं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दुआ कसरत से मांगा करते थे, या हय्यू या कय्यूम बिरहमतिका अस्तगीस, ए जिंदा और ए थामने वाले, मैं तेरी रहमत की उम्मीदवार हूँ, उसकी तलबगार हूँ। जब कोई बात समझ ना ना आए, कभी कभी इंसान की ज़िंदगी में ऐसे लम्हे आते हैं, बोल नहीं सकता, ज़ुबान साथ नहीं देती, ये समझ ही नहीं आता कि मांगू क्या और छोड़ूँ क्या, तो उस वक्त आप ये कहा करें कि या हय्यू या कय्यूम बिरहमतिका अस्तगीस, अल्लाह मैं तेरी रहमतों की उम्मीदवार हूँ। फरमाया कि जब कलेजे धक धक कर रहे हों, जब अल्लाह के नबी सल्लम शदीद किस्म की बेचैनी का शिकार होते थे, तो आप ये कलेमात पढ़ते थे। आज भी इंशाअल्लाह ताला यही बातें हमारे लिए भी हैं, और यही चीज़ें हम सबको फ़ायदा देंगी अगर हमने अल्लाह ताला के साथ अपना मामला दुरुस्त रखा। फिर इसी तरह अल्लाह सुबहाना ताला का क़यामत के दिन हम सबको जमा करना, ये भी उसकी रहमत की एक दलील है। आप कहेंगे ये कैसे? क्योंकि अगला नाम मालिक है, उस पर भी हम बात करेंगे, तो मैं दोनों को साथ ही मिलाऊंगी, अल मलिक। उसकी तफसील तो बाद में आएगी, लेकिन तफसील साथ ही रखते हैं। सूरह फातिहा में भी हम यही अंदाज़ देखते हैं कि अर्रहमान अर्रहीम मालिक यौमिद्दीन, बहुत रहम करने वाला, मुसलसल रहम करने वाला और बदले के दिन का मालिक है। बज़ाहर लगता है ये कौन सी रहमत है, ना होता, क्योंकि क़यामत का सोच के तो दिल घुटता है ना। लेकिन आप ज़रा एक लम्हे के लिए सोचिए, अगर अल्लाह सुबहाना ताला मालिक ना होता, या बदले के दिन का मालिक ना होता, या क़यामत ना आती, तो कितनी बड़ी नाइंसाफ़ी थी। तहज्जुदें कहाँ जाती, या आपका 13-14 घंटे का रोज़ा रखना कहाँ जाता, या आपका कई कई घंटे उसकी किताब के लिए बैठना, इसका अजर कहाँ जाता? आपको पता चल जाए ना कि 15 दिन से जो आप काम कर रहे थे, आपको इसकी पे नहीं मिलनी, तो शायद 16वें दिन आप वहाँ जा नहीं सकते। जुल्म लगता ना। क्या ये उसका रहम नहीं कि इंसान की ज़िंदगी भर की हुई कोशिशों के बदले देने के लिए क़यामत का दिन रख दिया? फिर आप कहेंगे, अच्छा गुनाहगारों के हक़ में ये दिन रहमत का कैसे है? सवाल तो उठता है ना। तो आप देखिए कि गुनाहगारों को पाक कर देना, यानी उनको ज़मीन से उठा लेना, या उनको जुल्म करने से रोक देना, इंसानियत पर रहम नहीं? ये ऐसे ही है जैसे एक इंसान इम्तिहान देता है ना, तो उसका पेपर उसका अपना उस्ताद चेक करे, और एक होता है बोर्ड का इम्तिहान। आपके पेपर किसी और शहर जा रहे हैं, उनके इधर आ रहे हैं, कितने रिजल्ट फ़र्क होते हैं। मैंने देखा कि मैट्रिक के लिए बच्चे क्यों परेशान होते हैं पाकिस्तान में, कि पता नहीं अब क्या होगा, कल तक तो अपने टीचर के पास पेपर जाते थे, अब गैरों के पास जाएंगे, और वाकई रिज़ल्ट मुख्तलिफ होते हैं। अल्लाह ताला खुद मालिक यौमिद्दीन है, ये उसकी रहमत है, क्योंकि उसको हमारे ज़ाहिर बातिन का पता है, उसको हमारी मजबूरियों का पता है, उसके ऊपर एक एक चीज़ खुली हुई है। वो ऐसा नहीं करता कि हमें कह दे कि अच्छा करूँगा और बाद में कि वो तो तुम्हारा रिकॉर्ड भी नहीं मुझे पहुँचा। कई दफ़ा रिजल्ट बदल जाते हैं। तो अल्लाह ताला की एक सिफत दूसरी सिफत के साथ ऐसे जुड़ी हुई है कि इंसान बेहतरी रखे। एक और अंदाज़ से देखिए अल्लाह ताला की रहमत को, और मुझे नहीं लगता कि हम सिर्फ इसी नाम का इहाता कर पाएँ। इतनी रहमतें हैं कि खुलती जा रही हैं, सामने आती जा रही हैं। एक उसकी रहमत क्या है कि उसने हमारी तकदीरें हमसे छुपा रखी हैं। कल हमारे साथ क्या होना है अगर हमें पहले ही पता चल जाए, दिल तो चाहता है ना पहले ही पता चल जाए क्या होगा, लेकिन ये उसकी रहमत उसने नहीं बताया। क्यों, कैसे? मिसाल देती हूँ। सपोज़ कीजिए एक औरत है, कई साल की शादी के बाद अभी तक औलाद नहीं हुई, फिर उसको पता चले कि वो प्रेग्नेंट है, फिर बेटा है, और बच्चे के पैदा होते ही साथ एक पर्चा आ जाता, बुकलेट उसकी तकदीर का, जिसमें क्या लिखा होता, उसकी आने वाली ज़िंदगी के सारे वाक़यात लिखे होते। अब सपोज़ करें आप 10 साल के बाद एक बच्चा मिला और उस बच्चे के साथ तकदीर का एक पेपर आ गया, उसमें लिखा होता है ये आज की तारीख में पैदा होगा, फिर जितने भी अरसे में ये दांत रखेगा, फिर ये फलां स्कूल में जाएगा, ये माँ इस शहर से उधर मूव हो जाएगी, फिर ये कॉलेज जाएगा, फिर ये 20 साल का हो जाएगा, और अचानक एक्सीडेंट होगा और इसका इंतकाल हो जाएगा। वहाँ ना हो चले, उससे आगे 10 साल और लगा ले, साथ ही उसकी मौत की भी खबर होती, क्या खुशी मिलती। शादी के दिन पता चलता दुल्हन को कि ये तुम्हारी शादी हो रही है और ठीक 2 साल के बाद तुमने बेवा हो जाना है। होती है ना ऐसे वाकयात, शादी हुई 1 हफ्ते के बाद बेवा हो गई औरत, कई कहानी है। क्या ये अल्लाह का रहम नहीं कि उसने हमारी तकदीरें हमसे छुपाई हुई हैं? ये जो हमारे चेहरों पे खुशियाँ हैं ना, और जो बाज़ दफ़ा बहुत ही खुशी है वो इसलिए कि हमें पता ही नहीं कल क्या होने वाला है। कभी अचानक कोई हादसा आता है तो आप कहते हैं अरे अभी तो वो इतनी खुश थी, देखो अभी तो वो महफिल में कितनी खुश थी, क्या पता कि घर जाने से पहले शौहर का इंतकाल हो चुका हो। कैसे वाक़यात होते हैं आप देखा करें कि दुनिया की तारीख में क्या क्या मामलात होते हैं। तो ये उसने जो हमसे हमारी तकदीरें छुपा रखी हैं, ये उसकी हमारे ऊपर एक रहमत है। मत कहा करें कि अल्लाह आने वाले वक्त का मुझे पता चल जाए। अब देखिए जब कोई मुश्किल अचानक आती है ना तो सहार ली जाती है, और पहले से पता चल जाए ना ये मुश्किल आने वाली है तो वो वक्त नहीं गुजरता। जैसे किसी को पता चले ना कि उसका ऑपरेशन होने वाला है तो वो पहले से बेचारा परेशान होगा, लेकिन बाज़ दफ़ा वाकई इतनी चोट पड़ती है कि जिसमें इंसान सहार जाता है। अचानक मामला हुआ, फिर उसके बाद अचानक ही इंसान को वो चीज़ मिल जाती है। तो लिहाजा अल्लाह ताला के रहम को महसूस करना चाहिए। फिर इसी तरह और बहुत तरीक़ों से आप खुद सोचें। मैं यही चाहूँगी कि सारी बातें मैं ना बताऊँ, अब आप अपने लिए एक्टिविटी लिखें कि आपने अपनी ज़िंदगी को ऑब्ज़र्व करके देखना है। यकीन करें कि आपका सर झुकता जाएगा, आप आंखें नहीं उठा सकेंगे, और आप महसूस करेंगे कि वाकई जितनी रहमत मेरे ऊपर है अल्लाह ताला की, उतनी किसी के ऊपर नहीं। और एक रहमत का जिक्र तो वो खुद ही कहता है, अर्रहमान अल्लमल कुरान। रहमान तो वो है जिसने इंसान को कुरान सिखाया। और यकीन करें कि एक वक्त ऐसा आता है कि इंसान को दुनिया की सारी नेमतों से बड़ी नेमत अल्लाह का कुरान लगता है। सब कुछ जाए तो जाए, लेकिन अल्लाह का कलाम मुझसे ना छूटे, क्योंकि ये रहमान की एक ख़ास नेमत है जो वो अपने बंदे को देता है। अल्लाह ताला हमें इस रहमत से फ़ायदा उठाने वाला बना दे। माँ से ज़्यादा मोहब्बत करने वाला कोई माँ बच्चे को पेट में रख नहीं सकती अगर अल्लाह सुबहाना ताला उसके दिल में रहम का जज्बा ना डाल दे। एक बच्चे के बाद दूसरा बच्चा कभी पैदा ना करे अगर अल्लाह उसके दिल में रहम ना डाले। एक मौके पे सही मुस्लिम की रिवायत है कि कुछ लोग कैदी बन के आए, उनमें एक औरत भी थी, और एक औरत का बच्चा उससे छुड़वा के हाथ दूर चला गया, और माँ बावलों की तरह बच्चे को ढूंढ रही है, इधर से उधर भाग रही है। इतने में देखा कि बच्चा धूप में खड़ा है और पाँव जलने की वजह से रो रहा है। वो माँ जाती है और उस बच्चे को सीने से लगाती है, उसके हाथ नहीं, उसका मुंह नहीं, उसके पाँव के तलवे चूमने लगती है। मेरा बच्चा तेरे पाँव जले। अल्लाह के नबी सल्लम और आपके साथी ये मंज़र देख रहे थे। आपने लोगों से पूछा, ये बताओ क्या तुम सोच सकते हो कि ये औरत खुद अपने बच्चे को आग में फेंक दे? अल्लाह के नबी, ये कैसे हो सकता है? अभी तुमने देखा ये तलवे नहीं बर्दाश्त कर सकी जलते हुए, आग में कैसे फेंकेगी? फिर आपने फरमाया, वो ज़ात जिसके हाथ में मेरी जान है, अल्लाहु अरहमु बि इबादिही मिन हाज़िही बि वलदिहा, अल्लाह अपने बंदे से, इस माँ की अपने बच्चे से मोहब्बत से ज़्यादा मेहरबान है, फिर वो कैसे आग में डालेगा? मा यफ़लुल्लाहु बि अज़ाबिकुम इन शकरतुम व आमनतुम वकान अल्लाहु शाकिरन अलीमा। 5वें पारे की आखिरी आयत है। लोगों, अल्लाह क्या करेगा तुम्हें अजाब दे के? कोई माँ बच्चे को आग में नहीं डालना चाहती, रब भी नहीं डालना चाहता। ये तो तुम खुद भाग भाग के जाते हो ऐसे काम करने की तरफ कि तुम्हें वो आग में डाले। तो वो अल्लाह ताला तो हमें नहीं डालना चाहता, लेकिन हम खुद भागते हैं। चलिए, अब इन नामों से अपने लिए अमल की बातों में पहली चीज़ यह है कि सिला रहमी करनी है। अल्लाह ताला ने रिश्तेदारियों को मिलाने को सिला रहमी कहा। सिला मीन मिलाना, वसल वाव स्वाद लाम होता है, और रहमी रहम से, यानी खून के रिश्तों को मिलाना। अल्लाह ताला ने इस सिफत को इतना ज़्यादा एग्जैजरेट किया कुरान पाक में, यानी एक रिवायत में आता है कि उस कौम पर रहमत नाजिल नहीं होती जिसमें कोई कतई रहमी करने वाला हो। रिश्तेदारियों को काटना, आज के दौर में ये बहुत ही तकलीफ दह बात है कि मादा परस्ती इतनी आम हो गई, दुनिया की इतनी मोहब्बत लग गई कि खून के रिश्तों तक से इंसान कट गए। दुनिया कमाने के लिए या कमाई भी दुनिया को बचाने के लिए हम रिश्तेदारों से नहीं मिलते, और ख़ास तौर पे उनसे जो हमसे माली हिसाब से कम होते हैं, कि जहाँ जाके कोई हमारी खातिर नहीं, या जो आ जाएंगे तो हमारे कारपेट गंदे करेंगे, और खून के रिश्तों की जगह नोटों ने ले ली। ऐसी चीज़ों से अवॉइड करना है। कल क़यामत के दिन फरमाया कि सिला रहमी अल्लाह ताला के अर्श को थामे होगी। अल्लाह ताला फरमाएगा, जिसने तुझे मिलाया मैं उसको मिलाऊंगा, और जिसने तुझे काटा उसको मैं काटूंगा। अल्लाह ताला हमें रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करने वाला बना दे। फिर दूसरी चीज़, सिर्फ रिश्तेदारों से नहीं, दुनिया में रहने वाले हर इंसान और हत्ता के जानदार चुरिंद परिंद, उनसे भी रहम करना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक फाहिशा औरत थी, एक दफ़ा रास्ते से गुजर रही थी तो देखा कुत्ते का एक बच्चा था प्यास की वजह से ज़ुबान निकाले हुए। करीब देखा कुआं था, उस औरत ने अपना मोज़ा उतारा और कुएं में डाला, फिर उसके साथ कुछ पानी लगा, उस पानी को उस कुत्ते के आगे निचोड़ा और उसने उसको पी लिया। अल्लाह ताला ने उसकी सदा पे उसको बख्श दिया। अब ये मत कहिए, हमने इस रिवायत को बड़ा ही अजीबोगरीब रखा है, कहते हैं जो मर्ज़ी करो, तुम्हें क्या पता अल्लाह तुम्हें एक कुत्ते को पानी पिलाने पे बख्श दे। अल्लाह को गलती नहीं लगती, याद रखिएगा। कोई ज़रूर खैर होती है तो वो आगे आती है, लेकिन इंसानों पे भी रहम करना, जानवरों पे ज़्यादा बोझ डालना। इसी तरह मैं यहाँ बात करूँगी मुलाज़मीन के ऊपर, उनकी वुस्सत से ज़्यादा बोझ डालना। मेड्स, मासियाँ, घर के काम करने वाले मुलाज़िम, उनको इंसान समझना है, हत्ता कि जानवरों पे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक दफ़ा एक ऊँट ने आके रहम की दरख्वास्त की थी कि मेरा मालिक मेरे ऊपर बहुत बोझ डालता है। तो वो तो रहमतुल्लिल आलमीन थे ही, हमने भी इंशाल्लाह अपने लिए रहमत की बात करनी है। फिर कुछ और बातें कि कैसे हम दूसरों के साथ रहम वाले बन जाएं। मैं तो महसूस करती हूँ कि इंसान और जानवर तो क्या, अगर हम अपने इर्द गिर्द रहते हुए गैर मुस्लिमों पर रहम करने लग जाएं तो शायद इतनी बेनियाजी से ना रहें जैसे कि आज रहते। क्या हमारा दिल नहीं चाहता हमारे इर्द गिर्द रहने वाले जहन्नुम से बच जाएं? हर एक अपने आप से सवाल करे। जिन नॉन मुस्लिम्स को मैं देखती हूँ, मिलती हूँ, हाय बाय करती हूँ, उनके साथ दिन में कितने घंटे गुजारती हूँ, क्या मैं ये चाहूँगी कि वो आग में चले जाए? तो फिर अल्लाह ताला की सिफत और रहमा की हमसे ये तकाजा करती है कि हर मुमकिन तरीके पे लोगों तक इस्लाम का पैगाम पहुँचाएँ। ये बेहिसी तोड़नी पड़ेगी। हम तो रब के पैगाम उसके बंदों तक पहुँचाने निकले थे, अभी अपनों तक नहीं पहुँचाए। हमें तो खुद नहीं ये बातें समझ आती, दूसरों के साथ कैसे होंगी। फिर इसी तरह आप देखिए कि अल्लाह ताला की सिफत को अगर हम अपने साथ रखें तो उसका एक और इजहार भी हो सकता है कि अपने मामलात ऐसे कर लें कि लोग चलता फिरता हमें मुसलमान समझें। चीटिंग नहीं, धोखा नहीं, झूठ नहीं, जो मुमकिन हद तक अपनी ज़िंदगी ऐसी दिखाएं कि वो लोग जो हमारे हाथों से किताबें नहीं वसूल करते, जो हमारे हाथ से सीडी नहीं लेते, जो बुकलेट नहीं लेते, वो भी हमें देख के कहें कि वाकई ईमान वाले ऐसे ही होते हैं। आपको मालूम है कि जब मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध को फतह किया था, लोग राजा दाहिर के जुल्म व सितम से तंग आ चुके थे, और जब वोट मिले थे तो मुसलमानों के नहीं मिले थे, हिंदुओं के भी मिले थे। क्यों? उन्होंने कहा कि हमें लगता है कि ये है मुखलिस हुक्मरान। आज तक तो जितने भी आए वो जुल्म करने वाले आए, ये हमारे साथ इंसाफ का मामला करेगा, और गैर मुस्लिमों ने मुस्लिमों को वोट दिए। सच्चा इस्लाम जहाँ होता है वहाँ ऐसा ही मामला होता है। अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक अता फरमाए। फिर अगली चीज़ जो रहम कर सकते हैं हम अपने इर्द गिर्द रहने वालों पे, वो क्या है कि नातवां किस्म के बोझ जो लोगों ने अपने कंधों पे डाल रखे हैं, शादियों की सूरत में, रस्मों रिवाज की सूरत में, लेन देन की फरसूदा रस्में, उनको तोड़िए। यकीन करें आपके ख़ानदान के कितने ही लोगों पर ये रहम हो जाएगा। आप कहेंगे ये कैसी बातें हैं, इससे क्या रहम का ताल्लुक है? मैंने देखा कि एक उधेड़ उम्र की खातून है, चेहरे पर तफक्कुर के यानी जैसे असरात हैं। मैंने पूछा क्या बात हुई? कहने लगी वो देखो कि ख़ानदान में दो शादियां आ गईं। तो मैंने कहा कि इसमें बुरी बात क्या है, ये तो खुशी की बात है, दो शादियां आ गईं। कहने लगी नहीं, फिर दोनों घर बड़े करीबी हैं। तो मैंने कहा ये तो और खुशी की बात है। कहा नहीं, फिर दोनों तरफ अच्छा देना पड़ेगा। अगर हम लोगों पर रहम करें ना, और कम से कम उन लोगों पे जो पिसे हुए लोग हैं, जो हमारे ख़ानदानों में इतने ज़्यादा वेल ऑफ नहीं, तो उन पे रहम का यही तरीका है कि अपनी ज़िंदगी को हल्का करें, वो तौक और वो बोझ उतार दें जो गले में डाल रखे हैं। और अल्लाह ताला ने अगर कोई भी चीज़ हमारे पास रखी है नेमत की, तो उसको दूसरों के साथ शेयर करना है। अल्लाह ताला से यही दुआ करूँगी कि वो हमें लोगों के लिए रहमत बना दे। आप एक सवाल तो देखें, मैं अपने इर्द गिर्द रहने वालों के लिए रहमत हूँ या जहमत? मेरा ख्याल है अगर हर एक ने ये सवाल लिख लिया ना, तो घरों में होने वाले झगड़े तो ज़रूरी ख़त्म हो जाएंगे। क्या मैं अपने इर्द गिर्द रहने वालों और ख़ास तौर पे घर में रहने वालों के लिए रहमत हूँ कि जहमत? बात खोल के इसलिए करती हूँ कि लोग समझने में आसानी करें। अमूमन घरों में ऐसे लोग होते हैं कि जो मुख्तलिफ रिश्तों में बंधे होते हैं, मसलन सास और बहू को घर में रहना पड़ता है, नंद और भाभी को रहना पड़ता है, और इसी तरह कुछ और रिश्ते भी होते हैं। अगर हर इंसान के अंदर ये सोच आ जाए ना कि मैंने अपने साथ रहने वालों के लिए रहमत बनना है, तो आप बताइए क्या कभी किसी की लेग पुलिंग होगी, बैक बाइटिंग होगी, चीटिंग होगी? नहीं होगी। तो चाहते हैं कि आप भी रहमत बन जाएं। मैंने इस ज़मीन के लिए रहमत बनना है, धन 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 करके कदम नहीं मारने कि ज़मीन लरसने लगे। मैं देखती हूँ कि ये बिहेवियर्स हैं, अंदर तकबर भरता है ना तो बाहर रवैयों से भी दिखता है। हम पाँव भी ज़मीन पे यूँ मारते हैं कि जैसे ज़मीन हिलने लगे। अल्लाह ताला से यही दुआ करते हैं कि वो हमारे दिलों में रहम डाल दे, और ऐसा दिल बना दे कि जो लोगों की तकलीफ़ों पे पिघल पिघल जाए, और हम अल्लाह ताला की रहमतों पे भरोसा करते हुए ख़ुद भी लोगों के लिए रहम का ज़रिया बन जाएं।